أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج کا درس سورہ الفجر سے شروع ہوتا ہے، تیسواں پارہ سورۃ فلان 89. یوں تو قرآن کریم کے اس آخری پارہ میں، جیسا کہ آپ اب سابقہ درسوں سے میں سنتے چلے آ رہے ہیں، اس آخری پارہ میں قرآن کریم کی ساری تعلیم کو سم اپ کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس میں اس کا اقتناز آ گیا ہے، کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر وہ سب کچھ دے دیا گیا ہے، لیکن ان صورتوں میں پھر بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان میں مزید کنسنٹریشن آ جاتی ہے، اور بھی زیادہ اقتناز کے ساتھ مرکوز ہو جاتی ہے ساری تعلیم چند آیات کے اندر، اور سورہ الفجر انہیں صورتوں میں سے ایک صورت ہے. قرآن کی ساری تعلیم، پورا پیغام اس کے اندر آ گیا ہے اس صورت سے. لیکن اس کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا. یہیں ذرا آگے چل کر ایک سورہ القریش آتی ہے، اس تمہید سے اس سورہ الفجر کا پیغام زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آتا ہے. القریش 106 سورت. لَإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی پیشوائیت کے سارے نظام کو ان چار آیتوں کے اندر ان کی پوری نقاب کشائی کر دی گئی ہے. خدا کے نام پہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اڈے بنے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو خدا کی طرف اپنی نسبت کرنے سے عزت اور تعظیم کے بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں، نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، نہایت امن میں رہتے ہیں. یہ انہیں حاصل ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں. اس میں کسی خاص مذہب کی تخصیص نہیں ہے. ہندوؤں کے مندر ہوں، عیسائیوں کے گرجے ہوں، یہودیوں کے قومے ہوں، سکھوں کے گردوارے ہوں، آپ کے ہاں کے اللہ کے گھر ہوں، جہاں کہیں بھی یہ مراکز ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو معاشرے میں عزت کا مقام بھی حاصل ہوگا، ان کی حفاظت بھی ہوگی ان گھروں کی، ان کی زندگی بھی بڑی خوشحالیوں کی گزرے گی. لیکن ان کے کرتوت کیا ہوں؟ قرآن نے قریش کے متعلق کہا، زمانہ قبل الاسلام کا قریش، یہ کعبے کے متولی تھے اور کعبے کو خدا کا گھر ہونے کے اعتبار سے اس تمام علاقے میں ایک خاص مرکزی حیثیت حاصل کی. تو کعبے کے متولی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا مقام کیا ہوگا, ان کی کیفیت یہ تھی. اور اس کیفیت سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اس زمانے میں اس ملک کے اندر قانون کی کار فرمائی تو تھی نہیں, دن دہاڑے قافلے لٹ جایا کرتے تھے, راجنیاں فضاتیاں عام تھیں. لیکن قریش کے قافلوں کی یہ کیفیت تھی کہ سردی اور گرمی سال بھر ان کے قافلے یہاں سے وہاں تک آتے جاتے تھے, اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھ لے, کیونکہ ان کے ساتھ ایک تقدس کا دبتسمہ ہوتا تھا. یہ قریش کا قافلہ ہے, یہ کعبے کے متولیوں کا قافلہ ہے, یہ خدا کے گھر کے رکھوالے ہیں, یہ جن کا قافلہ ہے. بڑی چیز حاصل تھی. قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح, تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کے ساتھ نسبت کی وجہ سے تمہیں یہ مقام حاصل ہے. پہلے تو کہا ریلا تک ستائے وقت امن کی یہ کیفیت کہ سال بھر تمہارے قافلے یہاں سے وہاں تک چلتے رہتے ہیں اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اد امہم من جوئن و امنہم من خوف, خوف کے مقابلے میں امن. اور پھر وہی بات جو آپ کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ روٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے, لیکن کیا کیا جائے, اب اس قرآن کو بدل کے تو دوسرا قرآن لے آئے ہم. اطعمہم من جوع, تمہاری بھوک کا انتظام کیا, کتنی سہولت سے تمہیں روٹی مل رہی ہے. جتنی سہولت سے انہیں روٹی ملتی ہے دنیا میں کسی اور کو اتنی سہولت سے نہیں ملتی. اس سرمایہ دار کو بھی ہزار بکھیڑے اور سفیڑ کرنی پڑتی ہے, انہیں وہ بھی نہیں کرنا پڑتا. محنت تو خیر وہ تو ان کے یہاں حرام ہے, کسی قسم کی ذہنی پریشانی بھی نہیں ہوتی. کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح, کعبے کے ساتھ نسبت کی بنا پر آسائشیں اتنی حاصل کہ امن و سلامتی ہر طرح سے سیکیور, رزق کا ایسا عمدہ انتظام, یہ کچھ خدا کے ساتھ نسبت کی بنا پہ تمہیں ملتا ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ اسی خدا کے قوانین کے خلاف ورزیاں کرتے چلے جاتے ہیں. انسان کو کم از کم کچھ تو احساس شرافت ہونا چاہیے, یا تو اپنی نسبت ہٹاؤ اس کی طرف سے, اور اگر اپنی نسبت رکھنی ہے اس خدا کی طرف تو کم از کم اتنا تو پاس وفا کرو, اس کی نسبت کا اتنا تو لحاظ کرو کہ اس کے قوانین کے خلاف سرکشیاں تو نہ برتو. آپ دیکھیے عزیزان من, ایک چھوٹے سے واقعہ سے چار چھوٹی سی آیتوں میں یہ پورا نظام مذہبی پیشوائیت کا جو ہے کس طرح اس کی نصاب کشائی کر گیا ہے قرآن. محض خدا کے ساتھ نسبت کی مقام کی وجہ سے یہ مقام حاصل, اور اسی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی انہی اڈوں کے اندر ہوتی ہے دنیا کے اندر. اس چیز کو سامنے رکھیں, کعبے کے متولی, کعبے کے متعلق جیسا کہ میں نے گزشتہ کنونشن میں اپنے مقالہ میں عرض کیا تھا, کعبے کو نو انسانی کے اجتماع کا مرکز بنایا گیا تھا, عالمگیر انسانیت کے نظام کا ایک سمبل قرار دیا گیا تھا. بنایا اس لیے گیا تھا اسے کہ جو بھی اس نظام کے اندر داخل ہو جائے اسے امن مل جائے, اور لوگوں کو دعوت اس لیے دی جاتی تھی لیشہدوا منافع لہم, تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ یہ نظام خداوندی انسانوں کے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. ये था काबे का मकाम, और इस काबे में जो अजीम इज्तिमा होता था, याद रखिए छोटे छोटे इज्तिमात भी होते थे इसमें, और एक इज्तिमा अजीम होता था कि जिसे अमरा आप कहते हैं, अमरा का राय, वो ये छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसें थी और एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती थी, उसे हज के नाम से ताबीर किया जाता था। इसे खास अजमत हासिल थी इस इज्तिमा को। वो कहता है कि खुदा के नाम से जो घर बना, उस घर के जो तुम रखवाले बने, मकसूद इससे ये था कि तुम नौ इंसानी की मनफत के लिए क्या कुछ करते हो, इसके लिए लोगों को बुलाओ और उन्हें दिखाओ कि देखो ये निजाम तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, जिसके रखवाले हम हैं, जिसका सिंबल ये काबा है। हज का इज्तिमा इसके लिए था, और कहा तुम्हारी कैफियत ये है कि उस इज्तिमा में जो ही तुम्हें वो ईद का चांद नजर आया, और कैफियत तुम्हारी क्या हुई, अब देखिए, वल फजर वल आलिन अशरिन व शफ वल वत्र, शफा और वत्र, ये शफा तो कहते हैं इवन को, युक्त को, दो चार छ आठ, वत्र होता है और एक तीन पांच, और ये जो जुए के पांसे होते हैं उनमें यही चीज होती, पांसे खेले इसी तरह से जाते हैं, किसी साइड के ऊपर उनके एक तीन पांच, दूसरी साइड के ऊपर दो चार छ, और इसी एतबार से इस जुए को खेला जाता है। एक चीज कुरान ने कही कि ये दस रातें जो इस एहतमाम और इंतजाम में गुजरनी थी, इतना अजीम मकसद, उस मकसद के लिए इतना अजीम इज्तिमा, तुम उसके मुंतजिम, तुम इस काबे के रखवाले, और तुम्हारी कैफियत ये है कि ये दसियों रातें इस तरह रंग रंगियों में तुम मचाते हो कि यूं तो सारा साल ही कुछ कम नहीं होती तुम्हारी फहाशी बदमाशी, लेकिन इन दिनों में खास तौर पे जो तुम्हें कम अज कम इसका ही लिहाज रखना चाहिए था कि बाहर की दुनिया आ रही है, लेकिन तुम्हारी कैफियत ये है कि ये दस रातें तो तुम गर्क होते हो, शराब में गर्क, जुए में गर्क, फहाशी में गर्क, और जाहिर है कि जहां भी दौलत बगैर मेहनत के आएगी, ये चीजें तो लाजमी तौर पर आएंगी वहां, और फिर जब उनका ये इज्तिमा होगा तो इज्तिमा की कैफियत मेले की थी, उन्होंने अख्तियार कर रखी थी, और मेला फिर इस किस्म का कि जिसमें अब जहां दौलत इस तरह से इकट्ठी हो रही हो, जहां वो काबे के ब्राह्मण जिसे कहा गया है, इकबाल ने कहा है, और काबे ही के नहीं, महंत और ब्राह्मण तो जहां कहीं भी हो, जहां भी यात्रा होती होगी वह महंत होंगे, और जहां महंत होंगे आप जरा झांक कर देखिए उनके अंदर, हर जगह यही चीज आपको नजर आएगी, वो हरिद्वार का कुंभ हो या आपके यहां का ये मेला हो, कैफियत वहां यही होगी कि इन दिनों में भी वो ये नहीं करेंगे कि कम अज कम इसका ही लिहाज रख लिया जाए, कुछ रियायत रख ली जाए। तो कहते हैं इन दिनों में और ज्यादा तुम बदमाशियां शुरू कर देते हो, दस रातें इसमें ये अहम रातें थी इस इंतजाम के लिए, और वो तुम्हारी कैफियत ये है कि रंग रंगलियां मगाते हो, आम जुआ खेलते हो, अरबों की कैफियत ये हो चुकी थी इन कुरैश की, ये चीजें उनके यहाँ मौजूद ही नहीं गिनी जाती थी, फिर इस कदर माशरे का आम चलन हो गया था ये, कहने लगे कि ये चीजें तुम्हारे यहाँ की, ये रातें उन रातों के बाद उसकी इस किस्म की सुबह, वल लैले या यसर, और फिर जो आखिरी रात आती है उसमें तो इंतहा कर देते हो तुम इस मामले से, सोचिए तो सही। ये चीज बताई कि ये है रब्बे काबा के साथ निस्बत के बाद तुम्हारी रविश ये है कि ये कुछ तुम करते हो, और उसके बाद कहा कि ये जो हमने शहादत पेश की है, हल सी जाले का कसम लजी हिजर, ये बड़ी अजीम शहादत है जो हम पेश कर रहे हैं, और शहादत है जो आगे कहा जा रहा है उसके लिए बतौर शहादत के इस चीज को पेश किया जा रहा है, और कहा कि ये शहादत बड़ी अजीम है। आपको याद होगा मैंने कहा था इन अरबों की जुबान के एतबार से अजीब कौम थी ये। अकल का लफ्ज आया था सामने किसी जगह, और मैंने ये कहा था कि उस जमाने में जबकि अभी इंसान मासूसात परसेप्शन के इल्म के अंदर था, कॉन्सेप्ट बड़े कम हुआ करते थे, इस कौम की कैफियत ये थी कि इन मासूस चीजों के से इस किस्म के नतायज अखद करते थे जिन्हें हम आज कंसेप्चुअल नॉलेज कह सकते हैं, तसव्वुराती इल्म उसे कह सकते हैं। ये असल का लफ्ज मैंने कहा था, ये वो रस्सी थी जिससे कि ये ऊंट का घुटना बांधा करते थे कि वो रुक जाए। रोक देने के एतबार से इन्होंने इस रस्सी से अकल का लफ्ज तजवीज किया, और अकल तो आप जानते हैं उसका फंक्शन ये है, वो ये सिखा दे कि इंसान को कहां रुक जाना चाहिए। और यही दूसरा लफ्ज भी आया है जी हिजर, इस हिजर के माने भी होते हैं रुक जाना किसी मकाम के ऊपर। और यहां खास तौर पे ये कहा है कि वो लोग जो ये जानते हैं कि कहां रुक जाना चाहिए उनके लिए इस शहादत में बहुत बड़ी दलील मिलेगी जो हम आगे कहने वाले हैं। आपको याद है मैंने ये भी अर्ज किया था कि ये जुबान जो है अजीब खसूसियात की हामिल है, मसलन यही हे जीम रे आया है अरबी जुबान में, जिस लफ्ज के अंदर भी जीम और हे इकट्ठे आ जाएंगे उसके माने रोक देने के हो जाएंगे। जैसे जहीम जहन्नम के लिए जो कुरान आया है, वो के जिनकी नशो नुमा रुक जाए, वो मकाम के जहां इर्तिका का सिलसिला आगे न बढ़ सके, इसी तरह से ये हिजर है। ये हुजरा जिसे कहते हैं, उनके यहां ऊंटों के बाड़े को कहते थे, उन्होंने बकरियां का बाड़ा होया है। कहा कि वो कि जिसके अंदर इतनी सलाहियत है जो समझ ले कि मुझे किस हद तक जाकर रुक जाना चाहिए, उसके लिए इन शहादात के अंदर बड़ी वाजिया दलीलें हैं उस बात की जो हम आगे कह रहे हैं। और अपने अंदाज के मुताबिक आपको याद है कि कुरान एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लाने के बाद फौरन तारीखी शबाहत पेश किया करता है, तारीख की शहादतें सामने लाता है। कहा सोचो जरा, अलम पर कैसा फाला रब्बो का बेआदिन इरम आजाद इमाद, इनसे कहो कि ये जो इनका इनके लक्षण है, ये जो इनके चलन है, इनका अंजाम क्या होगा, इसके लिए जरा तारीख के औराक को उलट कर देखें। और इन्होंने इनको तो ये कहा गया था कि तारीख के रिकॉर्ड रिटन तो तुम्हारे पास नहीं, इन अकवाम साबका की उजड़ी हुई बस्तियों के खंडरात तो तुम्हारे सामने हैं, दिन रात तुम उनसे गुजरते हो, उनके ईंटों पर लिखे हुए नकूश को अगर तुम पढ़ो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस रविश का नतीजा क्या होता है। जैसा कि अजीजा ने मन में तफसील से इस पूरे कुरान के दर्स में बता रहा हूँ, कुरान करीम तारीख को एक फलसफे की हैसियत से पेश करता है। फिलोसफी और हिस्ट्री जो है ये कुरान ने दी थी, और वो नहायत साइंटिफिक तरीके से एक बात करता है। वो कहता है कि यहाँ दुनिया में यूं ही बाई चांस नहीं चीजें हो जाती, हर वाकया जो होता है उसके पीछे उसकी इल्लत होती है, उसका एक कॉज होता है, और तारीख ये सिर्फ बताने के लिए है कि अगर इस किस्म के हालात माशरे के अंदर पैदा हो जाए, अगर इंसान इस किस्म की रविश इख्तियार कर ले, अगर कोई कौम इस किस्म का निजाम इख्तियार कर ले, तो उसका अंजाम ये होगा। जब और जहां ये सूरत पैदा हो जाएंगी, ये कंडीशन इस किस्म के नताइज मुरतब होकर रहेंगे। तारीख से मुराद ही कुरान की ये है, और वो इसीलिए तारीखी शवाहिद को बार बार पेश करता है अकवाम साबका के, कि वो बताया जाए कि इस कौम ने ये रविश इख्तियार की थी तो उसका नतीजा ये निकला था, और अगर तुम भी यही रविश इख्तियार करोगे तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। ये है वो अहमियत तारीख की, जिसके लिए कुरान एक दावा करता है और उस दावे के बाद फिर तारीख के शवाहिद पेश कर देता है। यहाँ ये कहा कि तुमने ये कैफियत अपनी इख्तियार कर रखी है, बगैर मेहनत और मशक्कत के तुम्हें इतनी दौलत मिल रही है, अमन मिल रहा है, बजाय इसके कि तुम नौ इंसान की मनफत बख्शियों के लिए तुम कुछ काम करो, कि तुम फारिग हो गए हो फिक्र माश से। तुम्हारी कैफियत ये है कि दुनिया भर की बदमाशियों के अड्डे बना लिए हैं तुमने इस खुदा के घर को। दौलत का ये सरफ, उसके बाद कहा कि इसके लिए देखना चाहते हो कि इसका अंजाम क्या हुआ करता है, तो देखो पहले कौम आज को लो। अब कुरान ने यहां तीन अकवाम का जिक्र किया है, मरकजी एतबार से तो उनके जुर्म की नौयत एक ही थी, सल्ब व नहब एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन उनके पैकर बड़ा मुख्तलिफ थे। कौम आज के मुतल्लिक कुरान ने यह कहा है कि तुम जब किसी मजलूम के गले को घूंटा करते थे तो बड़ी सख्ती से हाथ डाला करते। कौम आद इरामा जातिल इमाद, क्या लफ्ज है था जातिल इमाद, कहना तो ये था कि उनके पास बड़ी फरावानी से दौलत थी, लेकिन लफ्ज इमाद आया है, इसके बुनियादी माने कॉन्फिडेंस से होते हैं, भरोसे के होते हैं, एतमाद तो यहीं से है ना, वैसे तो इसके माने सुकून से होते हैं, वो पिलर जिसके ऊपर कोई इमारत खड़ी हो। कहा यह कि उनके पास इतना कुछ था कि वो बगान में खेज ये समझते थे कि हमारी ये छत गिर नहीं सकती, हमारे सुतून बड़े मजबूत हैं। अल्लाह की लम युखलक मिस्लुहा फिल बलाद, उनकी हम असल अकवाम में उनकी मिसाल नहीं मिलती थी, उनकी कैफियत ये थी, और वही उनके कसरे मसीहत जिनके मुतल्लिक उनका जाम ये था कि ये गिर नहीं सकते। कुरान तो फिर महसूसात में ले आता है ना, दूसरी जगह है कि जाओ इनकी उजड़ी हुई बस्तियों पे देखो कि उनकी छतें किस तरह से ऊंटी पड़ी हैं, यानी उन्हीं का ये लफ्ज आते ले बात लेके उन्हीं की छतों के मुतल्लिक ये कहा है दूसरी जगह कि जाके देखो जिनको अपने सुतूनों पे इतना एतमाद था उनकी छतों की कैफियत क्या हुई। وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, قوم ثمود اس کا جرم قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کے بڑے بڑے سردار چراگاہوں اور چشموں کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیتے تھے اور غریبوں کے مویشیوں کو پانی تک نہیں پینے دیا کرتے تھے۔ یہی تھا نا ناقہ حضرت صالحہ کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہوا ہے, آپ احباب کو اب پتہ ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ وہ ثمود کو دیکھو, उनका निजाम ये था कि खुदा की दी हुई जमीन, उस पर खुदा का दिया हुआ रिज्क, और वो साहिब इक्तदार लोग लकीरें मार के उनको अपनी मिल्कियत में लेते थे, गरीब और गरीबों के मवेशी तक पानी और चारे से मोहताज हो जाते। कहा ये था समूद, और आपको मालूम है कि वो नाका के मुतल्लिक क्या कहा है कुरान करीम ने, वो जिसे अफसाना तराजियों ने बना दिया कि वो एक चट्टान में से ऊँटनी निकल आई थी। बात तो इतनी कही थी कुरान ने कि हजरत साले ने उनसे कहा यह था कि मैं कुछ नहीं चाहता, ये अर्ज़ल्ला है खुदा की जमीन, ये नाकतुल्ला है, एक मवेशी जो ना मेरा है ना तेरा है, सिर्फ ये समझो कि ये एक जानदार मखलूक खुदा की पैदा करता है, खुदा की मखलूक खुदा की जमीन के ऊपर खुली रहनी चाहिए। बात ही इतनी कही थी ना वो, यही समूद जिनकी कैफियत ये थी कि पहाड़ों में पत्थरों को तराश तराश के किले बनाया करते थे। वह फिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ी, फिरऔन जिसके खूंटे दूर दूर तक जड़े हुए थे, पूरी मलूकियत का नुमाइंदा, ذل اوتاد دور دور تک جس کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں, یہ اس کی کیفیت تھی. اللہ زینا ان سب کے متعلق کہا, جرم یہ تھا تغاو فل بلاد. میں نے کہا تھا نا کہ ذی ہجر قرآن لایا ہے لفظ, کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ معلوم ہو کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھا. یہاں لفظ تغاو لایا ہے کہ جو حدود فراموش ہو چکے تھے انہوں نے حدود ہی توڑ دی تھی, کہیں رکے ہی نہیں تھے. قوت, دولت, سرمایہ, حشمت, یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں. اسلام رہبانیت سکھانے کے لیے نہیں آیا, وہ حدود مقرر کرتا ہے. یوں ہی آپ نے حدود سے تجاوز کیا یہ سب کچھ حرام ہو گیا. ان کا جرم یہ تھا کہ تغاو فل بلاد, ان ممالک کے اندر حدود شکنی کرتے تھے, حدوں سے آگے بڑھ جاتی تھی یہ قوم تھی. فاکثروا فیہا الفساد, پھر کیفیت ان کی یہ ہوتی تھی, فساد ہوتا ہے ناہمواریاں پیدا کرتے چلے جانا. معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے تھے اور بڑی کثرت سے پھر یہ کرتے چلے جاتے تھے. ناہمواری تو اپنے مومنٹم سے بڑھتی ہے نا, ایک پیدا کیجئے تو اپنے زور درو سے وہ دس اور سات پیدا کر دیتی ہے. اس لیے فاکثروا کہا ہے کہ فساد کی بنیاد ڈالی تو وہ اپنی خرابی زور درون کی بنا کے اوپر تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. معاشرے کو انہوں نے یہ کچھ بنا دیا, پھر ہوا کیا اس کا انجام, فسب علیہم ربک صوت عذاب, ان کے ان اعمال کا نتیجہ یہ نکلا خدا کے قانون مقافات عمل کی روح سے کہ تباہیاں آئیں اور مختلف انداز سے آئیں. تباہی تو ایک ہی شے ہوتی ہے, اس کے آنے کے اسالیب اور انداز مختلف ہوا کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی انداز سے کوئی قوم تباہ ہو, مختلف انداز ہوتے ہیں قوموں کی تباہی کے, اسی لیے اس کو سوتا عذاب کہا. ویسے سوت تو کوڑے کو کہتے ہیں, ہٹ کو کہتے ہیں, لیکن وہ چونکہ ان کے ہاں کا وہ جو کوڑا ہوتا تھا مختلف چمڑے کے ٹکڑوں سے اس کو لپیٹ کے بنایا جاتا تھا, اس اعتبار سے مختلف نوعیتوں کی تباہیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کے تباہیاں, خدا کا ہنٹر آیا, لیکن اسی کے اندر لفظ کے اندر میں عرض کرتا ہوں نا کہ قرآن کے الفاظ سے کیوں نہ آگے گزر جایا کیجیے گا, کہ وہ جو کہا کہ مختلف نوعیتوں سے تباہیاں آئیں تو اس کے لیے لفظ وہ استعمال کیا. اگر وہاں لٹ کا استعمال یہاں ہوتا تو اس کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے, لیکن یہ جو بنا ہوا بٹا ہوا کوڑا ہوتا ہے چمڑے کے ٹکڑوں کا, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی چیزیں ایک بن گئی ہوتی ہے, تو ایک تباہی اور نوعیتیں اس کی مختلف. خوف کا عذاب کیوں ہوا یہ ایسا, ان ربا کا لدل مستاد, بڑی عجیب چیز. انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم یہ کچھ کر کے نہایت حفاظت سے دبے پاؤں اس راستے سے گزر کر اپنے گھر چلے جائیں گے, لیکن پولیس کو اگر خبر ہو جائے کہ یہ جو مجرم ہے انہوں نے فلاں راستے سے گزرنا ہے, تو وہ ابتدا ہی نے ان کو گرفتار نہیں کرتی, وہ چھپ کے اس راستے میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں سے جب گزریں گے تو چھاپہ مار کے ان کو پکڑ لیں گے. کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جرم کیا دیکھنے والا کوئی ہے نہیں, اب نہایت امن و حفاظت سے ہم اس راستے سے گزر کے گھر پہ پہنچ جائیں گے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ خدا کا قانون مقافات اس راستے میں گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جس راستے سے عمل میں گزرنا ہوتا ہے. کیا چیز ہے, عمل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے, نتیجہ اس کے بعد آتا ہے, عمل پرسیڈ کرتا ہے ہمیشہ. یہ اس کا جو نتیجہ ہے اس کے متعلق کہا ایسے جیسے عمل نے اس راستے سے گزرنا ہے اور وہاں راستے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں گھات کے اندر کہ یہ آیا اور اس کو دبوچا. کہا انہیں یہ پتہ نہیں تھا खुदा का कानून मकाफात उन राहों में घात लगा के बैठा होता है जिन राहों से इंसान के अमल में गुजरना होता है। अब आगे आई बात बड़ी अजीब, कहा ये सारा इसलिए है कि इंसान समझता ये है कि इस दुनिया के अंदर ये सारा कुछ जो चल रहा है महज इत्तेफाकात और चांसेस के जरिए है या धांधली से है। जो धांधली कुछ मचा दे, कुछ धौंस मचा दे, वो जिस तरह से जीता है कर ले, या महज चांसेस से इत्तेफाकात से ऐसा हो जाता है। यहाँ कोई खास कानून नहीं, किसी इफेक्ट के लिए कोई कॉज नहीं, ये चीज इंसानों के जेन में होती है, इसलिए वो जराइम पे उतर आते हैं, कानून शिकनी करते हैं कि उन्हें यकीन इस बात का नहीं रहता कि यहाँ हर शय एक कायदे और कानून के मुताबिक हो रही है। अब देखिए उसकी मिसाल क्या कुरान देता है। ये बात तो रोजमर्रा हमने सुना ही होगा, किसी को अगर प्रमोशन मिल जाए उसे मुबारकबाद देने के लिए आप जाइए, आप देखेंगे कि वो कहेंगे ये कि साहब ये तो कुछ अल्लाह का फजल हुआ है, वरना मैं तो बड़ा नालायक का आदमी हूँ, मुझ में तो कोई काबिलियत ऐसी है नहीं, मैं तो इस पर मुस्तहिक ही नहीं था, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता था, मुझसे कई बेहतर बड़े बड़े अच्छे पड़े हुए हैं, ये जो मुझे चुन के ये दिया गया है उसका खास फजल है, उसका खास कर्म है, हाजा मिन फजल रब्बी। और ऐसा कहने वाले के मुतल्लिक जेन में ये होता है कि बड़ा खुदा करता आदमी है, अल्लाह को मानने वाला आदमी है, इसीलिए ये कुछ कहता है ना, इसे बड़ी खूबी करार दिया जाता है, उसे वर्चू करार दिया जाता है जो ऐसा कहने वाला होता है। सोचिए जरा कि अगर यहाँ के किसी दफ्तर के अफसर के मुतल्लिक ये कहा जाए कि वो ऐसे लोगों को प्रमोशन दे देता है जो बड़ी नालायक होते हैं, वो डिजर्व ही नहीं करते, उससे बड़े अच्छे अच्छे बैठे हुए रह जाते हैं और वो उसे दे देता है, तो इस अकदा नवाजी को आप क्या कहेंगे? इसे हर शख्स गाली देगा, इस निजाम को बदतरीन निजाम कहेगा, और क्या कहें इनकी अकलों को कि अपने यहां जिस चीज को बदतरीन निजाम कहते हैं ऐसा करने वाले के मुतल्लिक रोज शिकायतें करते हैं, गालियां देते हैं, खुदा के मुतल्लिक बड़े फखर से ये कहते हैं कि शायद मैं तो बड़ा ही नालायक था, ये तो उसका बड़ा करम है मेरे हाल के ऊपर। क्या बात, कैसा खुदा बना रखा है महाराज रणजीत सिंह के पैचर का साहब जी, हाँ करम नवाज नहीं है उसकी, मेरा इसमें कुछ नहीं, हाल मेन सब ले आप देखिए कि ये चीज मजहब की दुनिया के अंदर कभी इस चीज को काबिल गिरफ्त नहीं समझा जाता, इसे मायूब करार ही नहीं दिया जाता, किसी का जेन इस तरफ नहीं जाता कि ये कहना भी कोई बुरी बात है कि ये तो खुदा की अनायत और उसके कर्म से हुआ। गौर फरमाया ना आपने, मैंने ये बात अर्ज की तो गालिबन आपके जेनों में भी बात आई कि हाँ साहब होता तो रोज ऐसा है, लेकिन शायद इससे पहले आपके जेन में भी ये बात ना आई हो कि इसमें भी कोई बुराई की चीज है, और मजहब की दुनिया के अंदर तो कभी किसी के हिताए ख्याल में भी नहीं आ सकता कि ऐसा कहना भी कोई जुर्म है, ऐसा कहना भी कोई बुराई है कि इंसान पे अगर कोई उसको कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसके मुतल्लिक क्या है कि नहीं साहब इसमें मेरी कारीगरी तो नहीं है, ये तो खुदा का फजल है। मजहब की दुनिया के अंदर हाँ वो ईसाइत की ग्रेस हो या आपके यहाँ का फजल रब्बी हो, इस चीज को हमेशा मुस्तासन करार दिया जाएगा। लेकिन ये जो मैं कहा करता हूँ कि यही वो मकाम है जहाँ आगे पता चलता है कि कुरान इन मजहब ज़दा ज़हनियतों का तराशीदा नहीं है, ये उससे ऊंचे मकाम से आया हुआ है। वो चीज फिर दोहरा दूं कि जिसे तारीख इंसानियत में मजहब की दुनिया में कभी किसी दौर में मौजूद नहीं करार दिया गया कि इंसान को जो कुछ मिले उसे वो कहे कि खुदा का कर्म है, सुनिए कि कुरान क्या कहता है। फम्मल इंसान इजा मब्तला हो रब्बहू फअकरमहू वनअमहू। जब एक किस्म का पहलू बदला जाता है, गर्दिश जिसे आप कहते हैं, आपको मालूम है बला का लफ्ज जो है इसके माने मुसीबत ही नहीं होती, इसके माने होता है एक हालत से दूसरी हालत के अंदर बदल देना, पहलू बदल देना किसी का। बुराई है उसको अच्छाई के साथ बदल दिया जाए, उसके लिए भी ये बला लफ्ज आता है। हमारे यहाँ तो बला मुसीबत ही के लिए आता है ना, लेकिन अरबों के यहाँ ये लफ्ज जो है इसके माने जो हालत है उस हालत से को तब्दील करके दूसरी हालत ले आना, बदल देना। बलाए हसना कुरान ने इसलिए कहा है। वो आगा आखिर ने जो खूबसूरत बला लिखा था एक दफा, तो हमारे यहाँ तो कोई और बात की जो उसने कही है। अरबी के अंदर बला के माने पहलू बदलना होता है। सुनिए फिर उसी बात को जो मैं कह रहा था कि मजहब की दुनिया में कभी किसी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती। जी मैंने कहा कि मजहब की दुनिया में कभी किसी का ख्याल भी इधर नहीं आता होगा कि ये कहना कि साहब मैं तो डिजर्व नहीं करता था, खुदा का कर्म है जो कुछ हुआ। कहा कि कैफियत इन लोगों की ये है कि जब मसलन इनका ऐसी गर्दिश आती है जिसमें इनको बहुत कुछ मिलता है, हकायशें नियमतें अकरम खुदा का कर्म जिसे कहते हैं, ये सब कुछ फयकूल रब्बी अकरम। वो कहता ये है कि सर मैं तो कुछ नहीं था, खास खुदा का कर्म हुआ मेरे हाल से। अल्लाह अकबर, इस चीज को ये मायूब करार दे रहा है। तुमने क्या समझा है खुदा को? सारा निजाम उसका जमीन पे गिर जाता है अगर ये समझ लिया जाए कि खुदा यूं ही साहब जिसको जाता है बैठे बिठाए हुए बस बस देता है। ओ मालिक उल मुल्क का लखों का कर दे, कखों लख कर दे, जो मर्जी कर दे, बेनियाज जो हो या बेपरवाह जो हो जाता है। इनकी कैफियत ये है। अजीब चीज कह दिया कुरान बिरादरा ने, जो कभी किसी के जहन में आती। मैंने कहा था ना कि मजहब की स्टेज पे खड़ा होकर ये मजहब को चैलेंज देता है। इनकी कैफियत ये है कि ये समझ रखा है इन्होंने खुदा के मुतल्लिक कि यूं ही वो किसी को चाहता है तो वो नवाज देता है और ये कुछ दे देता है। पहली बात तो ये थी। अब अगली बात आई है वह अम्मा इजा मब्तला हो फकदरा अलैहि रिज़्क़हू। और जब फिर दूसरी गर्दिश आती है, पहलू बदला जाता है, उस पहलू बदलने के बाद होता क्या है आप देखिए। किसी और चीज का फिक्र नहीं किया कि होता फिर क्या है। होता ये है कि फिर रिज़्क़ की तंगी आ जाती है। बुनियाद जो है दुनिया की मुसीबतों की और गर्दिशों की तबाहियों की, उस बुनियाद पे जाता है कुरान। उधर ये कहा था कि उससे इकराम नवाजशात नोमास सारी चीजें, दूसरी तरफ सिर्फ एक बात कही है कि इस एक बात के बाद तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। कि जब फिर दूसरी गर्दिश आती है, पहलू बदला जाता है और उसके रिज़्क की तंगी हो जाती है। फयकूल रब्बी अहान, उस वक्त भी फिर चिल्लाता है कि सर मेरे रब ने खाम खा के लिए मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। साहब ये देखिए यहाँ पहुंच के भी फिर वो तकदीर का मसला आ जाता है आपके सामने। साहब वो तो मालिक है, जिस हालत में चाहे बंदे को राजी बरजा रहना चाहिए, सब्र और शुक्र करना चाहिए। जुबान पे तो एक तरफ रहा, दिल में भी शिकवा नहीं लेना चाहिए। बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही, हमने तो कुछ किया नहीं था। यानी आप तो बिल्कुल मासूम बन रहे हैं और ये कह ये रहे हैं कि उसने खामखा के लिए हमें ये सजा दे दी। किसी हाकिम के मुतल्लिक जज के मुतल्लिक ये कहिए। तो साहब मैंने किया तो कुछ नहीं था और मुझे खामखा के लिए ये सजा मिल गई, लेकिन बहरहाल अब हुक्म हाकम मज मफाजात कर क्या सकते हैं, इसलिए भाई इसे बर्दाश्त करो। कहते जब ये कैफियत होती है तो उस वक्त ये कहने लग जाता है कि यूं ही मुझे मेरे खुदा ने मुझे जलील कर दिया, मैंने भी ये लफ्ज जलील कर दिया, कह दिया है, क्या अर्ज करूं बिरादरान अजीज। अल्फाज आते हैं कुरान के तो जी नहीं चाहता आगे बढ़ने को, सारा एजाज तो इन अल्फाज के अंदर ही है। आहान मैंने अर्ज किया था ना कि अरबी जुबान के अंदर मुरादिफात की इंतहा नहीं होती, सैकड़ों हजारों की तादाद में होते हैं। सवाल ये होता है कि वो एक खास लफ्ज चुनता है कुरान वहां। ये एहानत के माने हमारे यहां भी जिल्लत के ही होते हैं, तौहीन के होते हैं, इज्जती के होते हैं। आपको मालूम है ये कहां इस्तेमाल करते हैं, जिसे कनाज कहते हैं आपके यहां, और हमारे यहां तो बड़ी वर्सू होता है साहब। कनायत तो पूछो नहीं साहब, कनायत कनायत के माने होता है किसी अपनी हालत के ऊपर मुतमइन होकर बैठ जाना और आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। कनात इसकी वजह से इंतसारी पैदा होती है इंसान में। सुनते जाइए ये अल्फाज, ये जुबान देखिए क्या है, इसकी वजह से फिर एक इंतसारी पैदा होती है। वो इंतसारी जो है गर्दन फराजा की इंतसारी नहीं होती जिसे तवाजो कहते हैं, वो गदा की इंतसारी होती है, जोर की और कमजोरी की इंतसारी पैदा करता होती है। अरबों के यहां ऐसी कनात हरकत से जो माने हो जाए जो इंसान को साकिन कर दे, और इस बिना पर उसके अंदर इंकिसारी जो आ जाए, उन्होंने कहा है ये वो जिल्लत है कि जो इंसान को दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ती, इसके लिए लफ्ज एहानत है उनके यहां। यहां कुरान लफ्ज लाया है, जब ये कैफियत पैदा हो जाती है तो फिर वो वर्च्यू अपने अंदर पैदा करता है कनात का, ठीक है, राजी बार रजा, फिर उससे एक इंतसार पैदा होता है तबीयत के अंदर, जो हर महकूम मोहताज के अंदर पैदा हो जाता है, जिल्लत का दूसरा नाम होता है। इसके लिए जो कैफियत है उसे इहानत कहते हैं। ये लफ्ज लाया है कुरान, कहता उस वक्त फिर ये चिल्लाना शुरू कर देता है कि साहब मुझे यूं ही तबाह कर दिया खुदा ने, मुझे यूं ही जलील कर दिया खुदा ने। अब सुनिए बिरादरान अजीज क्या मकाम आ रहा। कहा इनसे कहो कि खुदा इस तरह से धांधलियां नहीं किया करता, उसके यहां कोई चीज भी बिला वजह नहीं होती। मिला था अगर कुछ तो वो भी यूं ही ये नहीं था कि हर दा पानी की बख्श देता ही थी, वो भी ऐसे नहीं मिल गया था। और अगर ये कैफियत हुई है पैदा तो ये भी ऐसे नहीं हुई। इसके मुतल्लिक बता दिए कि ये क्यों हुई है। अगली चार पांच आयतें अजीजान मन इसी के मुतल्लिक हैं और अजीम आयात आ रही है। कहा तुम कहते हो कि खुदा ने हमें इस तरह से जलील कर दिया, जलील कर दिया, कमजोर कर दिया, नातवां कर दिया, ऐसे ही कर दिया। कल लाओ, आपको याद है ये लफ्ज कहां आया करता है, क्या कहते हो तुम, कतन नहीं ये बात हो नहीं सकता इस तरह से। इसके लिए ये लफ्ज आता है, सुन रखो कि तुम क्यों जलील हुए हो, तुम्हारी ये हालत क्यों हुई है। बल्ला तुक्रमून अल यतीम, इसलिए हुई है कि माशरे में जो तनहा रह जाता था तुम उसकी इज्जत नहीं किया करते थे। इंक्वायरी कमीशन बैठाते हैं, उसके बाद से दफ्तरों की फाइलें ढूंढते फिरते हैं कि इसमें पता चले कि ये हालत क्यों हो रही है, तो उन कागजों में नहीं कुछ मिलेगा। बात ये थी कल लाओ बल्ला तुक्रमून अल यतीम, कैफियत तुम्हारी ये इसलिए हुई है जो माशरे में जिसके साथ जत्था नहीं होता था, जिसके साथ पार्टी ज्यादा नहीं होती थी, जिसके पीछे कुछ वोटर्स इतने नहीं होते थे, तुम उसको खातर में नहीं लाते। टुकड़े हूं ये नहीं कि फिर उसकी तुम हिफाजत नहीं करे, उसकी इज्जत नहीं करते थे। आप देखते हैं मेयार इज्जत यहां क्या आ गया। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, इज्जत तो शराफत नफ्स की बिना पर होनी चाहिए, उसके उसने किरदार की बिना पर होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर की बुलंदी की बना पे होनी चाहिए। तुमने मेयार ये काम किया था कि जिसका जत्था ज्यादा जिसके वोटर ज्यादा, जिसके पीछे पार्टी ज्यादा, उसकी इज्जत। माशरे में जो तनहा रह जाता था, तुम उसकी इज्जत नहीं किया करते थे। वला तहादून अला तामिल मिस्कीन, और जिसका चलता हुआ कारोबार रुक जाया करता था, तुम एक दूसरे को तरजीब नहीं देते थे कि इससे रोटी का इंतजाम हमें करना चाहिए। यही बात नहीं कि तुम खुद नहीं देते थे। दो चीजें कुरान ने यहां बयान की, एक तो खुद तो वो बाहर हर एक अपने अपना कंट्रीब्यूट करेगा ही, इतनी सी बात नहीं है। माशरा ऐसा कि जिसके अंदर इंसान एक दूसरे को इसकी ताकीद ना करे कि देखो किसी ऐसे शख्स को रोटी से महरूमी न नसीब हो जाए कि किसी वजह से उसकी हरकत रुक जाए। जिसकी वही होता है कि जिसकी चलती हुई गाड़ी रुक जाए। कैसा तुम्हारी कैफियत ये थी? माशरे में जो अकेला रह जाता था, तुम उसकी इज्जत नहीं करते थे। जिसका कारोबार रुक जाता था किसी वजह से, उसके रिज़्क के सामान के लिए एक दूसरे को तरगीब नहीं दिया करते थे। मैं चारों जराय करा दूं तो फिर एक बात कहूंगा, ये बड़ी अहम। तुम ये वो गिनाता ये है कि तुम क्यों दलील हुए हो। पहली चीज, जिसके साथ पार्टी या जत्था नहीं होती थी, उसकी इज्जत नहीं करते थे। तो कारोबार रुक जाता था, उसकी रोटी का इंतजाम नहीं करते। वाकुलम्मा, कैफियत ये होती थी कि माँ बाप ने, ऊपर वालों ने कुछ कमाया, कमाने के बाद वो इतनी करोड़ों की लाखों की जायदाद मरने के बाद जो तुम्हें दे गए, तो तुम उसे सुनेर कर अकेले खा जाया करते थे। समझाया अभी बारे में? यहाँ दलील मिल जाती है कि अगर इस्लाम में ये सरमायादारी और जाति मिल्कियत नहीं है, तो विरासत के अहकाम क्यों आए हुए हैं? वो यह फर्ज करार दे दिया गया कि हारे के इतना छोड़ के मरे ताकि उसके जो बाद में आने वाले हैं उनमें ये बचे। ये है ना आपके यहां की चीज? भूल जाते हैं ये कहने वाले कि वो जाते अकदस व आजम कि जो इस कुरान और दीन पर अमल करने में बुलंद तरीन मकाम पे था, जिसका उसवा बाकियों के लिए नमूना बनता है, हजूर ने एक साई भी विरासत नहीं छोड़ी थी। और यही नहीं कि छोड़ी नहीं थी, और ये विरासत तो एक तरफ रही। ये ज़कात जो कहते हैं कि वो 52 तोले चांदी हो तो उसके ऊपर पड़ जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र ज़कात ही नहीं दी थी, इतना रखा ही नहीं था कि जिसके ज़कात वाली थी। और विरासत के मुतल्लिक तो ये कह दिया था कि हम ना नमाज से बदल दिया, हम लोग कोई चीज विरासत में नहीं छोड़ा करते, और अगर ये मुस्तमला चीजें मेरी जो है ये भी अगर विरासत में आ जाएंगी तो बैतुल माल के अंदर इनको दाखिल कर दिया जाएगा। ये है निजाम। वो जो विरासत वगैरह के खैरात वगैरह के जो आकाम आपके यहाँ है, वो तो बिरादरान अजीज जब ये ट्रांजिटरी पीरियड अभी होता है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इस आखिरी निजाम तक आपने पहुंचना होता है, कुरान उस दौर के लिए भी आपको अहकाम देता है। और वो देता इस तरह से है कि उसमें भी कदम ब कदम इंसान उस मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो मंजिल आ जाती है, उसने कहा कि जिस महाशरे का आम चलन ये हो जाए कि जो विरासत में आ गया है वो सुनेर के अकेला खा जाए, वो कहता है इसलिए तबाही आती है मेरा। किसी न किसी तरीके से एक सुनेर देता है, उसने तो फिर भी सुनेरने के लिए तो कुछ कोशिश और मेहनत की थी। ये जो उसके घर में पैदा हो जाता है, ये पैदाइश के साथ ही सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होता है। देख रहे हैं कुरान क्या जरायम करार दे रहा है? कहा तुम कहते हो खुदा ने यूं जलील कर दिया, खुदा यूं जलील किया करता है, ये वजह थी। माशरे में तनहा रह जाने वालों की इज्जत नहीं किया करते, जिसका कारोबार रुक जाया करता था उसकी रोटी के लिए एक दूसरे को तकलीब नहीं किया करते। ऊपर से जो कुछ तुम्हें मिलता था लाखों की तादाद के अंदर, उसको सीरे मादर की तरह हलाले तेजे समझ के सुनेर के खा जाया करते थे। वतुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, माल की मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, कुरान ने कहा ये तो जीनत है, लेकिन आप देखिए यहाँ एक मोहब्बत है माल की जिसे जुर्म करार दिया है, जिसका नतीजा कौमी तबाही और जिल्लत हुआ करता है। पहले तो ये हुब मोहब्बत के मानी कशिश होते हैं, माल की कशिश लफ्ज आया है हुबन जम्मा, क्या बात है। मैंने अर्ज किया है ना कि अल्फाज लाइए और आज के दौर के निजाम देखिए, लफ्ज के अंदर सिमटा हुआ निजाम आ जाता है। जम्मा होता है किसी जगह नशेर में गड़ा खोद देना ताकि इधर उधर जितनी बारिश हो उसका पानी वहीं आ जाए। बुनियाद है इसके बिरादरा ने अभी सारे छोटे सरमाए सीमत चिंता के इस गड़े में आ जाए। बारिश तो बरसेगी, हर जगह बरसेगी, लेकिन इंतजाम ये करना कि वो सारा पानी बह के इसके गड़े के अंदर आ जाए। एकदम जमना माल में कशिश है, मेहनत करो हासिल करो, लेकिन ये कैसी है? ये वही चीज, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसी दास गरीब की कई न पीछे दास। एक रुपया सौ रुपए के अंदर जहां मिलता है, हर छोटा सरमाया बड़े सरमाए, जहां जहां बारिश बरसती है, ये बारिश को बेमुजो मुआवजा मिल गई थी। लेकिन ये देखिए अगला निजाम तुम्हारा अपना पैदा करता है ना, कि नशेब पैदा करो और उस तरफ अपना गड़ा ऐसा खोल दो कि हर तरफ का पानी जो है सिमट के उसके अंदर आ जाए और तुम्हारी बगैर मेहनत भी आ जाए। गड़ा ही खोदना है ना, एक दफा खत्म कर दीजिए एक दफा, एक बड़ी सी फैक्ट्री खोद लिया गड़ा, फिर वो तो बाप ने की थी तुम्हें, तो वो भी इस तरह से अगले तरह विरासत नहीं मिल गई, गड़े की मिल्कियत है इनकी, हो गया रहा है। जहां बारिश का कतरा बरसता है इसमें आ पड़ता है, वो सारी जमीनें खुश रह जाती है, यहाँ ये गड़ा भर जाता है, यहाँ से फिर ये पानी बेचता है। सुन रहे हैं बिरादरान अभी कि तीख उठे के साथ तबाह कर दिया खुदा ने हमें, ऐसे ही जलील कर दिया सारे कौमों के अंदर हमें, ऐसे ही जलील कर दिया, तो हम ऐसे नहीं किया करते। जरा झांक के देखो अपने गिरेबान के अंदर मुंह डाल के कि तुम किया क्या करते थे। अपराध की बात नहीं कही, इज्तिमाई निजाम की बात कही। ये था तुम्हारा निजाम, चार टुकड़े देख लिए बरादरा ने यही बात, जो तन्हा रहता था उसकी इज्जत नहीं करते, उसका कारोबार रुक जाता था उसकी रोटी का इंतजाम नहीं करते, विरासत में जो आता था सीधे मादर समझ के अकेले समेट के खा जाते थे। निजाम ऐसा था कि जहां कहीं कोई बारिश बरसे तुम्हारे गड़े के अंदर सारा पानी आ जाए, ये वजह थी जो तुम इस तरह से गली हुई। मैंने पहले भी गालिबन एक आध मरतबा आपको याद दिलाया था और आज तो वो आयत सामने आ गई, इसलिए जी नहीं चाहता कि आयत सामने आए और यूं उसके आगे गुजर जाऊं। ये आयत 1300 बरस से हमारे सामने है, हमारे यहां किसी को ये तौफीक नसीब न हुई कि वो ये बात बताता कि ये जो निजाम है सरमायादारी का जिसमें तबाहियां आती हैं, ये आयतें उसकी तरफ इशारा कर रही है, इसकी तस्वीर ये है। समझ में आई बात तो फिर ये एक गैर मुस्लिम को समझ में आई, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट की समझ में बात आई। जब ये मौजूदा चीन को कामयाबी हासिल हुई है तो वो बहुत बड़ी शिकस्त थी अमेरिका, चैंकाई शास्त्र तो सिर्फ एक मोहरा था बसात के लिए, इतनी बड़ी शिकस्त उसके लिए सारे मुल्क में तोहराम मच गया, बड़ी बड़ी एजेंसियां कायम हुई कि इसके लिए वो जाके तहकीकात करें कि ये क्यों हुआ ऐसा, इतनी कुव्वत इतनी दौलत इतनी सरमाया इतने सिपाह इतना असला, फिर ये शिकस्त क्यों हो गई हमें। एक इनका सहाफी अमरीका में था, चीन में गया, वहां जाके उसने हालात का जायजा लिया, जैक बेल्डन उसका नाम था, उसने किताब लिखी चाइना सेव द वर्ल्ड, और उसने ये उसने सारा तजिया करके बताया कि हमें शिकस्त क्यों हुई, लेकिन सारे तजिए का जो महसूल था उसने अजीजा ने मन दो फिक्रों के अंदर समेट के रख लिया। ये किताब है उसकी मेरे हाथ में, चाइना शेक द वर्ल्ड, जैक बेल्डन की लिखी हुई किताब। वो समाप्त करता है अपने सारे तजियों को शुरू में फॉरवर्ड के अंदर, जो लंबी बात कहता है उसको तो छोड़ दीजिए कि क्या क्या चीजें थी। आखिर में आगे कहता है, गौर से सुनने की बात है अजीजा ने मान, फिर सोचिए कि ये कुरान किन की समझ में आता है, उनकी समझ में आता है जो अकलो बसीरत से इसके ऊपर गौर करते हैं। तकलीफ और करामत परस्ती की पट्टियां नहीं बनी हुई होती, बोलता है कुरान। फिर सोच लीजिए, अमेरिका का जर्नलिस्ट है, कोई मजहबी इंसान भी नहीं है, वहां जाके चाइना में तहकीक करता है, उसका वो रूट कॉज बताना चाहता है कि ये क्यों शिकस्त हुई है हमें और चाइनीज पीपल क्यों इस तरह से कामयाब हो गए हैं। कहां आता है सब कुछ लिखते हुए कहता है, नाइदर द अमेरिकन गवर्नमेंट, द अमेरिकन प्रेस, नॉर द अमेरिकन पीपल, नॉर मैनी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द फार ईस्ट इंडियन एम्बेसी, द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड द बिजनेस ऑफिसेज थॉट टू लुक बियॉन्ड देयर ओन नैरो नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट टूअर्ड द हार्ट ऑफ द एडमिटेडली इग्नोरेंट बट टेरिबली इमोशनल बिटर मैन एंड वीमेन ऑफ चाइना। और आगे है वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ, टू ऑल सच पीपल, टू ऑल सच पीपल वन कुड जस्टली एड्रेस द वर्ल्ड, मोहम्मद यूज टू डिनाउंस द मक्कन मर्चेंट बट यी ऑनर नॉट द ऑर्फन नॉर अर्ज यी वन अनदर टू फीड द पुअर। कहा कि शिकस्त की बात ये, इसका रूप या कॉज ये था कि यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो इन अमेरिकन और चाइनीज और इंपीरियलिस्ट और सरमायादारों की फोर्सेज को वो कुछ कहता जो मोहम्मद कुरैश के ताजरों से कहा करता था कि बल ला टुकड़े मुन जटीना बनाता हाथ दूना लाता मिली चीज। ये आज लिख रहा है वो, ये हर उसका ढूंढ रहे हो तुम फाइलों के अंदर, तजिए कर रहे हो, कोई ऐसा ना निकला। क्या बात कहती है, कोई ऐसा ना निकला जो इन संभक्तों से वो बात कहता जो मोहम्मद मक्के के ताजनों से कहा करता था कि तुम इसलिए डूबे हो कि बल ला तुकरे मुन अल यतीमा वला तहा दूना अला तहा मिस्कीन। ये वजह हुई, देख रहे हैं अजीजा ने मन जो कुरान के ऊपर खाली उज्जैन होकर गौर करने वाली कौमें हैं या अपराध हैं वो किस तरह से ही नतीजे के ऊपर पहुंचती हैं। हमारे यहाँ से किसी को तौफीक नसीब न हुई कि अब भी इस आयत को कोट करके ये शिक्षा देता है, वो ये चीज लिखता है कि बात सारी ये थी कि उनमें कोई ऐसा न पैदा हुआ जो इनको वो कुछ कहता है जो मोहम्मद अरब के साधनों को कहा करता था। कल सुन लिया आपने कि तुम ये कुछ करते रहो, ये निजाम तुमने बना रखा था, लेकिन तुम अपने जेन में समझे बैठे थे कि हमने जो इतने इतने बड़े पहाड़ खड़े कर रखे हैं हमें हिला कौन सकता है। कल लाओ, फिर वही कल आया, बिल्कुल गलत है, बख्ते होते हैं। ये यूं नहीं जैसा तुम समझे बैठे हो, इजादत का दिल अर्दो दस्कन दस्कन। ये जो माशी निजाम है याद रखिए, अर्थ जब आता है कुरान के अंदर माशी निजाम के मुतालिक आता है, समाज जब आएगा तो वो मुस्तकिल अखबार जो है उनके मुतालिक आएगा। नहीं, ये जो तुमने ना वहाँ फसाद आया था ना, नाहमवारियां पैदा की हुई, ये जो नाहमवारियां पैदा करता तुम्हारा निजाम है दक्षण दुक्का के लड़ दो दक्षण, इनको हम रोड रोलर चला के हमवार कर देंगे, ये हमवारियां पैदा होंगी, इसके बाद फिर ये निजाम बदलेगा। हमवारियां कैसे पैदा होंगी, बात दो लफ्जों में सारा प्रोग्राम दे दिया। कहा क्या चाहिए तब तुम्हारी ये है कि मजहब की दुनिया है तो वहां खुदाई खुदा खुदाई खुदा, वहां फितरत की कुव्वतें नहीं, दुनिया का कोई सामान नहीं। जहां ये फितरत की कुव्वतों को मुसफर किया है वहां खुदा नहीं। ये डुअलिज्म तुम्हारे यहां जो चली आ रही है, ये सनवियत जो चली आ रही है, ये जो तुमने अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हुए हैं, ये सारा जहन्नम उसकी वजह से है। ये हमवारियां उस वक्त पैदा होंगी। सुनिए अजीजान मान और घूम जाइए। वजा रब्बो का वल मलक सफन सफा, पहले तो लफ्जी माने देखती है, फिर जो उसमें उलझाव पैदा होता है सोचिए, तो इसका हल नहीं मिलता। हमारे जहनों में तो ये बात है ना कि ये हम मरने के बाद जाएंगे खुदा के पास, वो इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन के माने के लिए डरते हैं, हम जाएंगे वहां। तस्वुर ये जहन में है कि किसी जगह हमने जाना है, वहां ये सब कुछ होना है। लफ्जी मानों ने कहिए कहा है वह जा रब्बो का, तुम्हारा रब और उसके मलाइका सब दर सब आएंगे। अरे ये हम नहीं जाएंगे, ये क्या बात है, ये खुदा का आना क्या माने। आना और जाना तो वो होता है जो किसी स्पेस के अंदर मकान के अंदर मुकैद हो, यहां से वहां वहां से यहां, खुदा तो इससे मावरा है। तो ये क्या चीज है, बड़ी अजीब चीज कह दी। या रब, याद रखिए कुरान में जहां ये चीजें आती हैं, इससे मुराद खुदा के कवानीन होते हैं, इसकी मुकर्रर करदा अखदार समाही होती है। कहा कि ये उस वक्त होगा और मलक आपको मालूम है, मलाइका जिन्होंने आदम को सिजदा किया था, ये सारी फितरत की कुव्वतें जिनको इंसान मुसफर कर सकता है, ये मलक। कहा ये उस वक्त होगा कि जब खुदा की ये मुस्तकरार रुबूबियत के मुतल्लिक ये अहकाम और कवानीन ये और फितरत की ये सारी कुव्वतें एक साथ में आकर खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त ये हमदारियां पैदा हो जाएंगी। दोनों दोस्त ब दोस्त चले, फिर देखिए किस तरह से नामवारी पैदा हो सकती है। फितरत की कुव्वतें मुस्तकिल अकदार के ताबे, ये चलाइए तो कहता हम वारियां पैदा हो जाएंगी, तो आप बाकी नहीं रह सकता, उसमें फिर ये कैफियत ही नहीं होगी। तो ये तीन के धक्का ले और मशीन के तिबाही आ जाए, तब तो तुम अकेले ही खा जाओ और गड़े खोद के पानी से लेट लो, हो नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ अखबार समाधि तुम्हारी आई हुई है। दोष बदोष चलेंगी ये सब चीजें। वजी जहन्नम, ये है वो दौर के जिसमें फिर जहन्नम को लाया जाएगा। ये बात नहीं है कि तुम्हें उसमें डाला जाएगा, ये तो खुद जाता ही नहीं है, आती हैं ये चीजें उसके ऊपर वारद होती हैं। इसके बस में हो जाना तो जाए क्यों, और कैसे हो जाए। वो तो इसकी गुंजाइश नहीं देता कि जनाब के मिजाज शरीफ में आए तो चल के जहन्नम में दाखिल हो, ना आए तो गड़े रहो। वो जहन्नम आ जाती है यहाँ, जी जहन्नम, और लफ्ज फिर यहाँ वो जहन्नम आया है। आपको पता है ना कि जहन्नम जी हन्नू वादी हन्नू, वो वादी के जिसमें इंसानियत की कुर्बानी दी जाती है, ये है जहन्नम। जहाँ इंसानियत जबा की जाए वो जहन्नम होता है। इसी दौर के अंदर आपके सामने जहन्नम वादी है। यौमाज़ीन यतज़क्करुल इंसान हूँ, हाँ अब जो ये सब कुछ होगा ना सामने आ जाएगा वो जहन्नम, तो यहाँ पुकार उठेगा कि अल्लाह मेरी तौबा, मेरी माता दे दी, क्षमा करो महाराज, मैं भूल गया जी मेरी तौबा। वह अन्ना लहु ज़िक्रा, अब कहाँ की तौबा, अब कहाँ की नसीहत। ये तो तबाही आने से पहले की बात है, इसलिए कि इसमें तो वक्त अभी होता है ना कि आप अपने निजाम को बदल लें, इतना कर लें। बात तो सारी जो कुछ आप करेंगे उसके नतीजे में है, या अल्लाह मेरी तौबा कहने से तो बात नहीं चलती। वो तो गलत निजाम को बदल के सही निजाम कायम करोगे तो उसके नतीजे में जो चीज पैदा होगी उससे इजाला होगा उन नुकसान का जो गलत निजाम की वजह से पैदा हुआ। और अगर इसका वक्त ही नहीं रहा तो सवाल ही नहीं है फिर कौन का कहा कि जब फिर ये तबाही आ जाती है, जब ये इंकलाब आया करता है तो उस वक्त ये पेशेमानी और मैं नाम दें, उस वक्त तो ये सारे कहा करते हैं कि सारे का सारा ले लो और कहीं जान टूट जाए। अल्लाह बहुत दिख रहा हो उस वक्त ये नहीं हो सकता। यकूलो या लैतन कदम तो लिहायाती मैंने अर्ज किया था कि जिसे हम जिंदगी कहते हैं ये तो नफस शुमारी है, सांस लेना है, ये जिंदगी हैवान की भी होती है, ये तभी जिंदगी इंसान की भी होती है। कुरान इंसान के लिए इस जिंदगी को जिंदगी नहीं कहता, वो इसके लिए हयात बाशरफ जो है उसी को हयात कहता है, उसी को जिंदगी कहता है। ये जिंदा है लेकिन कहता ये है कि एक काश मैंने भी अपनी जिंदगी के लिए पहले से कुछ भेजा होता। सांस लेना जिंदगी नहीं, इसलिए तो कुरान ने कहा कि इसके जीव लिंदा है वगैरह रसूल कुम बेमाजी हो जीते जीते जागते इंसानों से कह रहा है कि आओ लब्बैक कहो उस दावत के ऊपर जो तुम्हें वो जो तुम्हें जिंदगी अता करेगी। ऐ जिंदा इंसानों लब्बैक कहो उस दावत की तरफ जो तुम्हें जिंदगी अता करेगी। तो आप देखा ना कि जिंदगी और जिंदगी में क्या फर्क है, इसी तरह से मौत और मौत में भी फर्क है। मर्ग हजार के बेसर ये मौत होती है और मर्ग शरफ जो है वो हयात होती है। सीखा क्या है यहाँ पहुंच के या लैतन कद्दम तो हयात एक मैंने भी अपनी जिंदगी के लिए पहले से कुछ भेजा होता। कद्दम तो अमल प्रसीड करता है बिरादरान अजीज नतीजे के लिए, पहले से कुछ भेजना होता है, पहले से कुछ करना होता है तो बाद में उसका नतीजा आता है। कदम तो ले हयाती अब इस पछताने से कुछ हासिल नहीं, मोहलत का वक्त बीत गया, तबाही सर पे आ गई। फयामा दिन ला युअज्जिबु अज़ाबहु अहदन वला यूसिफु वसाकहु अहदन। हाँ अब जो तबाही आएगी आ रही है इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। अब जो जकड़बंदी होने वाली है इसकी भी नजीर कहीं नहीं मिलेगी। तबाही और वफा जकड़बंदी जैसे आप कहते हैं ये होगा अंजाम इनका। बात शुरू की थी ऐ वो जो खुदा के नाम से अपने आप को मंसूब करके खुदा की तरफ मेहनत कशों की कमाई को इस तरह से निचोड़ते हो और फिर उसके रंग रंगलियां मनाते हो। ऐ काम आज की रविश से चलने वाले, ऐ समूद की चलन को अपनाने वालों, ऐ फिरौनियत को अपनी मम्लिकत का निजाम बनाने वालों, सोचो तो सही तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तुमने ये चीजें अख्तियार की, जो अकेला रह गया उसकी इज्जत न की, जो भूखा था उसकी रोटी का इंतजाम नहीं किया, सारी विरासत सीधे लादर की तरह खा गए, गड़े खोद खोद कर रुपए से जमा किया तुमने। याद रखो जब ये इंकलाब फिर आता है दफ्तन हर दफ्त रोड रोलर फिर से हमारी आ जाया करती हैं, फिर इस जैसी तबाही कभी नहीं होती, फिर इस जैसी जकड़बंदी कभी नहीं होती। ये तो रहा एक गिरोह और दूसरा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुर्जी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। हाँ दूसरी तरफ ऐ नफ्से मुतमइन्ना तुम आओ खुदा की तरफ। बात आ गई बड़ी साहब और जहां तक मैं समझता हूँ आइंदा सूरतों में ये आएगी नहीं, इसलिए मैं इससे यूं नहीं गुजरना चाहता। मैं माजरत चाहूंगा अगर इसमें 5-7 मिनट ज्यादा भी लग जाए, बात समझ ही लेनी चाहिए। क्या पता जिंदगी में फिर ये वक्त आए या ना आए। नफ्से मुतमइन्ना सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ शरीयत की दुनिया में नहीं, इससे आगे चल के हमारी शरीयत की दुनिया के अंदर भी नफ्स मुतमईन इत्मीनान। अब नफ्स मुतमईन जो है उसके मुतल्लिक तसव्वुर कुछ ऐसा दिया जाता है, तर्क आरजू दिले बे मुद्दा ख्वाहिशी कोई न पैदा, ये एक इत्मीनान। आप सोचते हैं कि ये इत्मीनान क्या है, इसके लिए नफ्स इत्मीनान। और ये सारे आपके यहाँ के रूहानियत वाले नफ्स मुतमईन कहते ये हैं, सास का नाम सकर्दा करिए, मरने तो फिर पहले मरिए। वो जिंदा को जिंदगी अता कर रहा है, ये मरने से पहले मर रहे हैं। खालिस बुद्ध मत का निर्वाणा निरादरा ने अभी तर्क आरजू तर्क दुनिया तर्क उकबा, और आपको पता है आगे हमें क्या पढ़ाया जाता था, तर्क तर्क ये बड़ी आखिरी मंजिल होती थी। पूछा हमने जगह साहब ये क्या होगा, कहने लगे कि ये जो तुम्हारे दिल में ख्याल आता है कि मैं इसको तर्क कर दूं, ये भी तो एक ख्वाहिश है, इसको भी तर्क कर दो जान ला। यानी लोकल एनेस्थीसिया से नहीं काम चला, मार दिया गया उसको, क्लोरोफॉर्म समझाओ इसको। यानी ये ख्याल भी दिल में न आने पाए तुम्हें कि मैंने ये चीज छोड़ देनी है, वो मेरे अंदर लगता है ये है वो मकाम कंप्लीट है ना ही निर्वाण सुनाओ सब। इसके बाद वो कहते हैं कि नाम यही है ना बुद्ध मत का सारा मत, कि हर आरजू तकलीफ का पेश खाना है तो अपन हार जीत के अल्लाह जी, और तकलीफ और मसाज से बचने की सूरत ही यह है कि आरजू ना पैदा हो। इसका नाम हमारे यहाँ आगे तसव्वुर में आता, याद रखिए आपका तसव्वुर सारा सरबा है तमाम मजार पुरानी गैर इस्लामी तसव्वुरात का जो मुस्ताहब भी हुई है। आदमी यहाँ से चला यहूदियों के जहार में पहुंचा, ईसाइयों की खानकाहों में आया, ईरान के मुख बच्चों के यहाँ हुआ, वहां से आर्यों के मैदान में आया, वहां से ये सिमटता हुआ ये काम सकोले हलीमे काबा के अंदर गुजरे, और उसके बाद आपके यहाँ का तसव्वुर बन के आपके सर पे सवार हो। इतनी नाम आरजू ही नहीं, इतनी नाम इसे नहीं कहते बराबर, दुनिया इतनी नाम कहते ये ठीक है। एक चीज है हर वक्त का इस्तराब, हरकत नहीं इस्तराब, उसके मुकाबले में एक शय होती है जिसे वकार कहते हैं। वकार कहते हैं अपनी एग्जिस्टेंस इस तरह की हो जाना कि इसे फना का खतरा ना रहे, इसे इतनी नाम कहते हैं। क्योंकि मैं समझाया करता हूं कि पानी के अंदर दोहनीयत जो होती है दूध के अंदर क्रीम की शक्ल में, इसकी अलग एग्जिस्टेंस अच्छी नहीं होती। इसको गदौने के बाद जब इसे मक्खन बना लिया जाता है, इस मक्खन की कैफियत यह है कि वो जो बाकी मांदा लस्सी होती है उसके अंदर सारा दिन डाले रखिए, वो कभी उसमें जज्ब नहीं होता। इसी का इस किस्म की हैसियत तैयार कर लेना कि वो अपनी जात को कभी किसी में जम और मुदगम न होने दे, इसे इसमें नाम कहते हैं। पहला इसमें ज़हनी इत्मीनान होता है, अपने मकाम से खड़ा बखुद खजीदा और मोहकम की को सारा जी मजीद खस के हवा तेज और शोला बेबाकस, ये इत्मीनान होता है। पहला इत्मीनान होता है ज़हनी इत्मीनान। हमारे यहाँ के ये जो इत्मीनान हासिल करने वाले हैं, पहली चीज तो इनके यहाँ अक्ल दानिश दलील को तलाक देना होता है, पाए इससे दिला लिया क्यों भी पाए जो भी सख्त बेतमसी दवा दलील के जरिए से साहब कोई चीज मानना बड़ी ही बोधी होती है सर। किस तरह मन मनमल पकी होंगी है ये बमाए का ज्यादा रंगी तुम गरत जीरे मुगाम हो इसी बात अभी क्यों साहब ऐसा करें कि साबित बेखबर न मुगाद दे रहा हो रसने मंजिल है तुम्हें नहीं जाए रास्ता देते इसमें की देखने की जरूरत है मुझे चला जा रहा है आगे बंद करके इसके पीछे चला जाए। हर भेड़ यही करती है दुनिया दलील और बुरहान की रूह से इतनी नाम नहीं आइए देखें कुरान के किसको इतनी नाम कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा जलील उनका कदर कहा जाता है कि जाओ ये मुर्दों की बस्तियां हैं ये कौम जो इस वक्त मौत के किनारे पे पहुंच चुकी हुई है जाओ और उसको जिंदा करने का इंतजाम करो। रब्बी अरे नहीं कैसा तू ही मौत है या अल्लाह मुझे बता कि किस तरह से ये होगा ये नहीं कहा कि ये मुमकिन है या नहीं करीब पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये बात होगी। कहा जाता है कि क्या तू इससे ईमान नहीं रखता कहा कि बात ये नहीं बात ये है कि वलाकिन लयत्मइन्ना कल्बी मैं ये इसलिए पूछता हूं कि मैं इत्मीनान अपने कल्ब का हासिल करना चाहता हूं। मोमिन खुदा से भी दलील मांगता है अपने ईमान के लिए बराबर और वो अगर साहब की तरह डांट नहीं लेता उसके बाद इब्राहिम को इमाम अल्लाह वो कहता है इंसानियत की लीडरशिप इसके हिस्से में आएगी जो खुदा से भी दलील मांग के ईमान लाना चाहता है और लफ्ज़ है लयत्मा इन्ना कल्बी इतनी नान ताकि मुझे हासिल हो जाए सोच लिया आपने इतनी नाने कल्ब किसे कहते हैं किसी शय को कन्विंस हो के कन्विक्शन के जरिए से मान लेना यह है सीमा और यही चीज है जो कुरान ने दूसरे मकाम से कहा है मोमिन की डेफिनेशन ये भी है कि मोमिन वो है कि और तो और उसके सामने खुदा की आयात भी पेश की जाए तो वो आंखें बंद करके कबूल ना करें उसको भी यह इत्मीनान है। इसीलिए कुरान ने इकराह के मुकाबले में इत्मीनान का लफ्ज इस्तेमाल किया है सूरह नहल में लाजिम मन उकरा कल जो हुआ है इत्मीनान इकरा का मुकाबला इकरा वो है कि जिसको जबरदस्ती मनवाया जाए और जबरदस्ती के माने ये नहीं है कि हंटर से या शमशीर गर्दन पे रख के मनवाई जाए वो जो आपके यहाँ मेंटल कंपल्शन होती है आपके जेनों को माउफ किया जाता है डराया जाता है धमकाया जाता है किस किस्म के अजाबों से हजर साहब की नाराजगी से डराने के बाद ये जो कुछ मनवाना है वो भी इकरा है बरादरान अजीज ये ईमान नहीं है। कुरान ने इकरा के मुकाबले में इत्मीनान का लफ्ज इस्तेमाल किया ये तो हो गया ज़हनी और कल्बी इत्मीनान। अब आगे आइए साहब फिर वही बात आ गई अब मैं क्या कहूँ करूँ कुरान के मुकाम को छुपा दू सुनिए क्या कहता है इत्मीनान कहाँ आता वज़रब अल्लाह मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन सूरह नहल 16:112 16:112 खुदा मिसाल बयान करता है मिसाल के जरिए से तुम्हें समझाना चाहता है इस बात एक थी बस्ती अजीजा ने मन बड़े गौर से सुनने की बात है ये दोनों की बस्ती थी उसमें अमन था समझ लिया कि बड़ी बात है अमन किसी मुल्क के अंदर होना नहीं मुतमइन्नतन इत्मीनान भी था वह अब ये पता चल गया कुरान की रूह से कि खाली अमन का जो होना है यही काफी नहीं है उसके साथ इत्मीनान का होना भी बड़ा जरूरी है। कुरान ने इन दोनों को नेमत अपनी बनाया अमन और इत्मीनान बस्ती थी आमेना तन मुतमइन्ना तन शायद ये अमन क्या हुआ थी लो अमन को हमें पता लग गया कि जो बाहर का कोई खर्चा है खौफ है उसकी डिफेंस आप कर दीजिए अमन है ये मुतमईन मतन क्या बात है। कुरान है अजीजा ने मन मेरे और आपके जहन पे नहीं छोड़ता, तो जो जी में आए तब तीन कर दें। जाती है रिज़्क़ो रग़दन मिन कुल्ले मकान, हर तरफ से रोटी का सामान जो था इतना पहुंचता था इतना पहुंचता था, बड़ी फरावानियां थी वहां। ये हुआ इसी मान, ये हुई बस्ती मुतमईन। यही नहीं बात छोड़ दी, सफारत बे अन उमिल्ला, उन्होंने खुदा की दी हुई इन आसाइशों को ढांप के रख दिया। कुफर के माने ढांप के रख लेना होता है, छिपा छिपा के रख लिया। फिर हुआ क्या, बात थी यहां वही फरावानी है। अजा का अल्लाह हो लिबास जुए वल खौफ, अमन के मुकाबले में खौफ, उनका अमन खौफ में बदल दिया और इत्मीनान को भूख में तब्दील कर दिया। देखते हैं इत्मीनान कैसे चिंता है। दिमाग कानू यशनाऊन, उन सनतों की वजह से जो लगा रखी थी उन्हें, यशनाऊन है वो जो कारीगरियां करते थे उसकी वजह से। आप मैं कह ये रहा था कि खौफ अमन के मुकाबले में खौफ लाया है कुरान, इत्मीनान के मुकाबले में जू लाया है भूख। कहा जाता है कि नहीं साहब, कुरान शरीफ में तो आया है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, नहीं, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। फिर ये जिक्र क्या होता है, ये जो हुक होती है सारी बात, कल्ब से जरबे लगती हैं, फिर कल्ब चलता है, डॉक्टरों से हार्ट फेल हो गया कहते हैं, ये कहते हैं चलता है, इसका नाम रखा जाता है जिक्र। मैंने अर्ज किया था अजीजा ने मन, फिर दोहरा दूं, सारी तबाहियां जो मजहब लाता है वो इस तरह से लाता है कि इस्तलाहात तो वो ही दीन की लाता है, इस्तलाहात को मानी अपने पहना देता है। मनी शुदा लाशें इसीलिए होता है मजहब जो दीन की, फरेब ही उसका ये है कि इस्तलाह उसकी रखता है। जिक्र लफ्ज वही रखा हुआ है, माने ये है, लेकिन कुरान है जरा जरा में अजीब, वो तो किसी बात को वाजह किए बगैर तोड़ता ही नहीं, वो आपको इस फ्रेम में आने नहीं देता। खुदा के जिक्र से इस ईमान कल्ब हासिल होता है। अगर जिक्र छोड़ दिया जाए फिर क्या होता है, व मन आरज़ा अन जिक्री 20/124, अगर लिखना चाहते हैं ये रेफरेंसेस लिखिए, बड़ी अहम है, सूरह ताहा 124, मन आ रजा अन जिक्री लफ्जागे जिक्र, जो हमारे जिक्र से इराज बरतता है फिर होता क्या है, फाइन्ना लहू मईशत अन संता, उसकी रोटी कम हो जाती है। तो नजर आ गया ना कि जिक्र अल्लाह से सतमा इंदन क्लियर के माने क्या हुए। इतनी नाम की पहली शर्त यह है बिरादराने अजीब, तो पेट भरा हुआ, जो एराज बरतता है हमारे जिक्र से, फाइन्ना लहू मईशत अन का, उसकी रोटी तंग हो जाती है। अगर साहब फरमाते हैं कोई बात नहीं सर, यहाँ ये सारी तबाहियां बर्बादियां भूख नंग आती है, क्यामत में तो जन्नत इनके लिए होगी, चंद दिन की बात है, भूख लीजिए, ये सारे वारिसों के जन्नत के ये जाएंगे जहन्नम में। वो कहते हैं जरा ठहर जाइए, अगर साहब मेरी बात सुन लीजिए, अलम न कह रहे हैं हजूर, जरा ठहर जाइए, काना पानना लहू मईशत अज़म का, उसकी रोटी तंग हो जाती है, वह नाश रहू यौमल क़यामत आमा, और क़यामत में भी अंदर उठाया जाएगा। قرآن ہے عزیزان من اور صاحب موسیقی ہے, صاحبین کی رسیاں نہیں, یہ فریب نگاہ سے چلتی ہوئی نظر آئے. دیکھتے ہیں کس طرح سے باندھ کے لے آتا ہے قرآن اس طرح, یا ایو یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک. اب سمجھ میں آیا کہ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ آؤ خدا کے نظام ربوبیت کی طرف. لفظ ہے راضیتم مرضیتن, راضیتن فائل کا سیدھا, مرضیتن مفعول کا سیدھا. تمہاری طرف سے کیا ہوا؟ راضیتن تم نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا تھا قوانین و خداوندی کے ساتھ. کرنے والے ہیں نا. نتیجہ کیا ہوا؟ مرضیتن اس قانون کے نتائج میں ہم آہنگ کر لیا اپنے آپ کو تمہارے ساتھ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا. راضیتن مرضیتن, ایک بات ابھی باقی رہ گئی کہ یہ جو صاحب رضائے خداوندی حاصل ہوتی ہے, اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے, یہ خلوت گاہوں میں ہوتا ہے, تجرد کی زندگی میں ہوتا ہے, خانقاہیت میں ہوتا ہے, لوگوں سے الگ ہٹنے میں ہوتا ہے. یہ ایک انفرادی تجربہ ہے, یہ انڈیویجول ایکسپیرئنس ہے, ایک فرد کی چیز ہے, اس کا تعلق معاشرے سے نہیں ہے. آئی تھی نا یہ بات, میں کہہ رہا ہوں کہ اس خدا کا کیا کریں, کہیں جانے نہیں دیتا صاحب, نکل نہیں لے لیتا کسی راستے سے. کہا یہ نہ ذہن کے اندر سمجھ لینا کہ یہ جو اطمینان قلب کا جنت ہے, یہ خلوت گاہوں کے اندر تم تجرد گاہوں کے اندر بیٹھ کے انفرادی طور پر ایک پرسنل ایکسپیرئنس حاصل کرو گے اور اس کا نام رکھ لو گے, یہ بات نہیں. فد خلی سی عبادی, میرے بندوں کے ساتھ کیا بولو, اجتماعی زندگی ہے. ایک فرد انفرادی حیثیت کے اندر یہ کیفیت نہیں حاصل کر سکتا. فد خلی سی عبادی, میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو, وقت کے لیے جنتی, یوں جنت کے اندر جا سکتا ہے تو فرد نہیں جایا کرتا جنت, قوم جایا کرتی, امت جایا کرتی, اجتماعی نظام. فرد خلی کی عبادی ود خلی جنتی, اے نفس مطمئنہ, جس کی کیفیت یہ ہے کہ یوں اطمینان, ذہنی اطمینان یہ ہے کہ جو مانتا ہے اس کے لیے دلیل و برہان اور سند اور حجت رکھتا ہے. تبھی اطمینان کی یہ کیفیت ہے کہ رزق فراہم حاصل ہے. اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ کیا ہوا ہے, اور پھر یہ انفرادی چیز نہیں ہے, اپنے آپ کو اس کے بندوں کی جماعت کے اندر شامل کیا ہوا ہے. وقت کے لیے جنتی, اور یوں یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سب بات ساری ہو گئی, سورہ الفجر ختم ہوئی برادران عزیز. آئندہ درس میں ہم سورہ البلد 90 سورت لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.